अपनी अट्टालिका में बैठी, कोई कहां बैठी, चारों तरफ से कृष्ण को दर्शन कर रही है सब। ये नवेली जब जाने लगी तो उसके साथ ने कहा, देखो तुम मत जाना, तुम घर में बैठी रह, बाहर में जाने से एक आवाज सर्प है तुम्हें डर लेगा, उसका देख कभी नहीं उतरता, तुम मत जा। मगर तेरी बेटी किस लिए जा रही? अरे मैं तुमको मना कर रही, दूसरों का मत देख अपना देख, तो आप क्यों जा रही हैं? मैं जा रही हूं कि तो तुम यहां बैठ। उसने कहा कि आप भी जा रही, तो वो आगे चली गई, पीछे से भी चली गई और जाकर के बैठ वहां दरवाजे से आड़ में, घूंघट की आड़ से उनको देख। कृष्ण ने बड़े दूर से उसको देखा, जहां भाव है कृष्ण की नजर जरूर पहुंचेगी, कोई भी हो, यदि कृष्ण के तरफ में थोड़ा सा भी जल्दी उसे स्मरण किया, कृष्ण उसे छोड़ नहीं सकता। ये जान माम प्रपद्यं ते ताम तथैव भजाम्यहम्, उनकी यह प्रतिज्ञा है जरूर देखेगा। इसलिए जब गोपी ने देखा भाव ने कृष्ण की तरफ में, तो कृष्ण से रहा नहीं गया, उन्होंने एक बछड़े की पूंछ छू दी और बछड़ा क्या किया, कुत्ता हुआ उधर ही चला जिधर कृष्ण उसको डायरेक्शन थोड़ा सा दे रहे हैं, ठीक एकदम उसी दरवाजे पर पहुंच गए कृष्ण, मानो बछड़े को संभालने के लिए दौड़ रहे हैं, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, किंतु उद्देश्य है दूसरा, वो ठीक वहीं पर पहुंच गया। देखा कि वो तो अनमनी थी, इनके तरफ में एकदम सारी चित्रपट्टि लगा करके एकदम देख कैसा चित्त की सारी वृत्तियां अनायास ही कृष्ण के तरफ में लग गई और सुदूत शरीर ठीक हो गई। कृष्ण ने बंसी बजाते हुए थोड़ी सी बंसी निकाली, उसके कपोलों को स्पर्श कर दिया और निकट से उनको तरफ में देख करके फिर बछड़े को उड़ाया और बछड़ा छलांग मारता हुआ चला गया, कृष्ण भी चले गए, किंतु कृष्ण जो गए ऐसे नहीं गए, उसके चित्त को साथ साथ में ले गए, उसके मन को उन्होंने ले दे गए ले करके और चले गए। सारे बछड़े चले गए, कृष्ण चले गए जंगल के अंदर में, अंतरित हो गए, चले गए भीतर। तब तक वहीं पर खड़ी रही, धूल उड़ती रही, उसको भी देखते रही, बेमन की हो गई और खड़ी एकदम लकड़ी की भांति। अभी लौटना घर में अब होश नहीं रही, फिर वो कृष्ण चले गए, धूल भी उड़ती समाप्त हो गई उसकी साथ। आई अभी तक तू खड़ी है, कहा था ना जब वो बड़ा भाई बीस वाला सांप है, काला नाग है, वो यदि किसी को काट लेगा उसका भी इसने होता था, यही तो देखा था, यही हुआ। उसको पकड़ करके झकझोर करके ज्ञान लगाने की चेष्टा की और फिर लौटी लेकर के घर में गई, कहीं इसका बोल कैसा कराया जाए, कहीं जाओ घर से दही निकालो, निकाल कर समर्थन करो। वो घर में गई, अनमनी थी और एक हंडिया उठा लाई, उसमें रखा था सरसों, उसमें रखा था सरसों, जानते हैं सरसों रखा था, उसी हड़ी को लेकर के उसी में मंदिर लेकर के चला गया। थोड़ी देर पर उसे साथ में देखा, ये घर घर तो नहीं कर करके, ये तो खर खर कर रही है, फिर जाकर अरे ये क्या कर रही है, अरे मैंने सभी मंथन करने के लिए कहा था, अच्छा ये बात कर, उठ उठ उठ, उसको उठाया, जाओ कुएं से पानी भरवाए और उसके सिर पर एक घड़ा दिया, उसके ऊपर में एक और घड़ा दिया, उसके ऊपर में एक और छोटा घड़ा दिया और यहाँ पर दो और बाल्टी रस्सी दे दी, कुएं भी बहुत गहरे होते हैं, बड़ी रस्सी लंबी सी दे दी, बड़ी भार, उसमें एक और डोल लगा दिया, उसको इस हाथ पर दे दिया और इस हाथ में भी खड़े एक रख करके उस पर खड़े दे दिया और दूसरे हाथ में अपना छोटा सा भी बच्चा था उसके गोदी में बैठा, ये इसको लेके जा और पानी भर करके जल्दी आ जा। देखा कि इसमें भी तो होता है, वो कुएं के समीप में गई, खड़े को रखा, बच्चे को रखा और पानी भरेगी, और भी भरने वाली बहुत सी किशोरिया थी, वो पानी उसमें से भर रही थी। उसने क्या किया, रस्सी लगा करके कहाँ खड़े के अंदर में देना चाहिए, तो उसने उसमें फंदा बना करके और बच्चे को ऐसे देख रही है, कृष्ण को देख रही है, चित्त तुम्हारा उसके घड़े में फंदा लगा दिया। जब फंदा लगाया, अरे नहीं ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, किसी ने कहा इसको भूत लग गया, दूसरे ने कहा भूत नहीं नंद का भूत लगा। इस तरह से ये मनमाना भाव है। माला करते समय हम क्या करते हैं, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार, चार बार, अरे वहां पर गिनने का समय है, वो गिन रही थी माला, माला करनी चाहिए तो ऐसे तन्मय होकर के करना चाहिए। ये मनमाना भाव का उदाहरण है। यही सर्वभूतम उपदेश गीता का है। नहीं समझते हैं लोग। अब इसको पाने के लिए सर्वधर्मानुपत्य, सब धर्म को प्रत्याग करके, जैसे गोपियों ने किया था वैसा तन्मय होकर के करना, यही गीता का है। इसलिए कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, गोपियां मन मनाओ हो मत कत्ता मत प्राण, वो हमारे प्राण स्वरूप हैं, वो हमारे बिना एक क्षण भी नहीं जा सकते हैं। गोपियां इसलिए जाना, पहले माता पिता को सांत्वना देकर के फिर गोपियों के यहाँ जाना। ये बच नहीं सकती, अब मरी अब मरी अब मरी, मरती क्यों नहीं? मत संदेश है। हमने उसे आचक ने कहा था, मैं कल आने की चेष्टा करूंगा और नहीं आज तो परसों जरूर आऊंगा। इसलिए वहां पर परसों नाम का एक गांव है, आयो रे, वहां पर एक ग्राम है। बच्चे जितने गांव है ना, जितने हैं सब कृष्ण की लीला की स्मृति देते हैं। आयो रे मैंने आ गया आ गया आ गया, परसों मैंने अभी परसों आएगा। इस तरह से पायगाम, पायगाम मैंने क्या, यहां पर कृष्ण दूध पी रहे हैं, कोई खेलन मन है, कोई कुछ है, सब उनके नाम के ऊपर में ये सब रखे हैं। तो ये कृष्णचंद्र जी, हाँ क्या बता रहा, ये नाम बताता गांवों के, जैसे उन्हीं के कृष्ण के ऊपर में ये सब नाम रखे गए हैं। मुझे तो ये कृष्ण जी उद्धव से कह रहे हैं कि जाओ इनको सांत्वना देना, ये ऐसे उन्नत प्रेम हैं, इसलिए मन ले रही हैं, क्योंकि मैंने कहा था ये परसों आएंगे, कल आएंगे नहीं तो परसों, किंतु कल गया परसों गया परसों गया परसों गया, अभी तक नहीं आ रहे, आएंगे जरूर उन्होंने कहा है। तो सत्य संकल्प है, जो कहते हैं वो जरूर करते हैं, इसलिए आएंगे, किंतु अभी नहीं आएंगे जरूर, इसलिए प्राण नहीं निकलते। और इसलिए प्राण नहीं निकलते, जब वो सुनेंगे आएंगे गोपियां मर गई तो कृष्ण क्या करेंगे, एक सेकंड भी प्राण नहीं धारण कर सकते। इसलिए हम अपना दुख नहीं देखती, हम क्या देखती हैं, कृष्ण कभी दुखी न रहे, कितना बड़ा त्याग है, इससे बढ़कर के कोई त्याग नहीं है, इसलिए मर नहीं रहे। कोई गोपी कहते यदि हम मर जाएं तो हमारे शरीर को समाज वृक्ष में लटका देना, उसी के साथ में हम लटका देना, उसका प्राण जो निकले सूर्य के रस्तियों में जहां पर नंद बाबा का घर है उसके ऊपर में मर आता है, पानी कहाँ पवन सरोवर में मिल जाए जहाँ पर के कृष्ण स्नान करते हैं, हवा कहाँ हो हमारे शरीर के जो वृक्ष प्राण वो नंद बाबा के आंगन में उठी रहे, जो कृष्ण हमारा स्पर्श करते रहे, हमारी मट्टी मिल जाए नंद बाबा के भवन में जहाँ पर के कृष्ण रोज चलते हैं। इसी तरह से प्रार्थना करते हैं गोपियों को तुम सांत्वना देने के लिए। तात्पर्य क्या, तात्पर्य इसका ये ब्रज ये प्रेम की भूमि है, मथुरा ऐश्वर्य की भूमि है। ऐश्वर्य और माधुर्य कहते हैं किसको, किस चीज को समझो, भगवत्ता को ऐश्वर्य कहते हैं, कृष्ण जैसे अलौकिक कार्य करते हैं एक साथ में, अर्जुन को मुख में ब्रह्मांड दिखलाया ये सब ऐश्वर्य है, गोवर्धन को धारण कर दिया ये भी ऐश्वर्य है, एक साथ में कोटि कोटि ब्रह्मांड लोग उनको सौ सूचि कर रहे हैं और कृष्ण उनके तरफ में देखते नहीं है, ये सब ऐश्वर्य है। और माधुर्य किसको कहते हैं, ऐश्वर्य रहे और न रहे, नग लीला के अनुरूप सब उनकी लीलाएं हो कार्य हो तो इसको कहते हैं मधुर भाव। उतना को कृष्ण ने मारा ये अलौकिक कार्य है, किंतु गोदी में बैठे हुए दूध पी रहे हैं और जब वो उतना मर जाए तो ये क्या करें, आकाश मार्ग में चलने की इच्छा हुई, चुनावर्त असुर उनको लेकर के ऊपर गया उसके गले को पकड़ लिया, जब वो मर गया तो कृष्ण ने किसी से लड़ा नहीं, सबसे पहले लड़ाई उनके कंस के ये पहलवानों के साथ में पहले वो लड़े, इसके पहले कभी किसी से लड़े हुए नहीं, बाल्य लीला करते उसमें कोई मर जाता है असुर अपने अपने कर्मों से वो अलग हो जाते, ये सब प्रेम की लीलाएं हैं, मधुर लीलाएं। अब चले उद्धव जी मथुरा है, मथुरा के दृष्टि से गोपियां जब ब्रज में थी प्यार कर रही हैं, ब्रजवासी लोग प्यार कर रहे हैं, ये बात दुर्ग हुई। अब उद्धव जी को भेज रहे हैं मथुरा में, यहाँ के नेत्र से तुम देखो संसार देखे जब प्रेम क्या चीज है गोपियों का, इसलिए भेज रहे हैं। किस लिए, मैंने जिस पाठशाला में बैठ करके प्रेम का पाठ पढ़ा था उसमें प्रिंसिपल राधा जी हैं और प्रोफेसर कौन सब हैं, ललिता विशाखा इत्यादि प्रोफेसर, ये शिक्षक। तुम उस पाठशाला में जाकर के पढ़ो कुछ नहीं तो आई अक्षर का प्रेम तुम समझ सकेगा। तुम जब लौट करके आएगा तो प्रेम के संबंध में मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ। अभी तुम प्रेम का अधिकारी नहीं है, समझता ही नहीं है तो तुमसे क्या मैं बात करूँ। इसलिए प्रेम की पाठशाला में कुछ सीखने के लिए उन्होंने भेजा, किंतु उद्धव को कहा कि जाओ उनको सांत्वना दे दो क्योंकि तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम में तत्व है, तुम उनको समझा सकता है। ऊपर से कहा उद्धव जी को हो सकता है कि कुछ अभिमान हो, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, कृष्ण का बहुत मैं प्रेमी हूँ, कृष्ण के बिना एक सेकंड में नहीं रह सकता, ये उनको ये सब भ्रम है। इसलिए उद्धव जी को दूसरे रूप में कहा जाओ वहां पर प्रेम का पाठ करो। कृष्ण ने कहा देखो हमारे पिताजी के चरण छू करके प्रणाम करना, मेरी मैया को प्रणाम करना, कारण जब मैं तुम्हारे लड़के पुत्र कृष्ण का मैं मित्र हूँ। तथा उद्धव जी साधारण नहीं है, बृहस्पति के शिष्य है, कृष्ण के मित्र हैं, उनके सलाहकार और मंत्री हैं, ऐसे उद्धव जी परम बुद्धिमान है, उनको भेजा। उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं आपको छोड़ करके नहीं रहूंगा, मैं कैसे वहां रहूं। उन्होंने कहा देखो जाओ वहां पर देखा कि मैं संपूर्ण रूप से वहां हूं, मैं मथुरा में एक अंश में हूं, मैं एक अंश में ही आऊं और सौ भाग में सौ भाग वहां पर जाओ। तो पहले कृष्ण ने कुछ उनसे संदेश भेजे, ये जाकर के कहना तुम्हारे कहने से उनको सांत्वना नहीं होगी, इसलिए तू मेरे संदेश लेकर के वो चले। देखिए जिसे कृष्ण जा नहीं रहे हैं, लौट नहीं रहे, उनके हाथों में हाथ मिला करके और चल रहे हैं और रथ सोने का चल रहा है, उस अभी ने स्वयं रथ पर बैठ करके रथ चलाना आरम्भ कर। कृष्ण खड़े रहे, रथ चला गया, भूल भी ओझल हो गई, वहीं के वहीं कृष्ण खड़े रह गए, फिर लौटे। लौटने के बाद में उद्धव जी वहां पर पहुंचे, शाम हो गई, रथ को खड़ा कर दिया, नंद भाव में पहुंचे। नंद बाबा को खबर आई वहां से उद्धव नाम का एक लड़का आया है, कृष्ण का मित्र, बाहर में आए और उसको बड़े प्रेम के लिए साथ में जाकर के रखा। देखा जिससे पहले इसको कुछ खिलाना पिलाना चाहिए, बैठ जाएगा तो वहां का समाचार पूछूंगा, कन्हैया मेरा कहता है ये पूछूंगा, उनको खिलाएंगे क्या। जब से कृष्ण गए हैं तब से चूल्हे दीपे पोते नहीं है, मकड़ों ने जाल बुन दिया और बर्तन जो है रसोई के और उधे पड़े हुए, वो मांगे नहीं गए, रसोई घर में भी चारों तरफ में मकड़े के जाल लगे। इस तरह से बैठा है कावट है, किसके लिए रसोई बने जब खाने वाला ही नहीं गए, इसलिए रसोई सबसे नहीं बने। बड़ी मुश्किल से एक ब्राह्मण को कहा, वो जाकर के चीनी, उसमें भी चीनी नहीं, बिना चीनी का खीर उनको खिलाया और इसके बाद में थोड़ी विश्राम करने के बाद में दोनों बैठे। नंद बाबा कहते हैं कुछ बोलते हैं किंतु बोली नहीं निकलती, जो ही कृष्ण के संबंध में कुछ पूछना चाहते हैं हृदय फट जाता है, गला रुक हो जाता है, आंखें एकदम फट जाता है। बड़ी मुश्किल से कहा, हमारा भैया वसुदेव कहता है वो बड़े सौभाग्य की बात है कि कंस मारा गया, अपने पापों से मारा गया, उसके पापों ने उसे मारा, किसी ने उसे मारा नहीं। हो मेरा कन्हैया कहता है ये पूछना ही चाहते हैं, गला रुक हो गया, बड़े जोर से रोने लगते, जितना ही उसको बोलना चाहते हैं वो कुछ नहीं बोलते। फिर बात उन्होंने बदली, बता करते हैं फिर अब वही पूछना चाहते हैं कि कन्हैया कैसा, गला एकदम रुक हो जाता है। थोड़ी देर बाद में बड़ी मुश्किल से कहा, कृष्ण कभी हमें स्मरण करता है, तुम्हारा हमें स्मरण करता है, कृष्ण क्या अपने मित्रों का कभी स्मरण करता है, कभी अपनी मैया का स्मरण करता है, कभी मुझे स्मरण करता है, क्या गोवर्धन को भूल गया, क्या वो यमुना के किनारे को भूल गया, क्या गायों को और बछड़ों को भी भूल गया। ओह मैं जब घर में रहता हूं तो कृष्ण की झिंगली, कृष्ण की मुरली, कृष्ण के खिलौने मुझे याद देते हैं, और मैं राधे करता कृष्ण को भूलने के लिए यमुना के किनारे आता वहां पर कृष्ण के सुंदर सुंदर छोटे छोटे पैरों को देख करके उसमें शंख चक्र उसके जो चिन्ह देख करके मैं अस्थि को जाता मुझे खास नहीं बनता वहां से मैं गोवर्धन को जाता हूँ वो देखता हूँ ऐसा कोई पेड़ नहीं जिसके नीचे उसने लीलाए नहीं थी उसमें कंदरा कंदराओं में उनने लीला की उसकी छवि वहां पर पड़ी हुई है मैं जहां जाता मुझे धैर्य नहीं मिलता ओह कृष्ण ने ये साठ हजार कितना कितने हाथियों का बल वाले कंस को चारों को मूर्ति को क्षण मात्र में उनको गिरा दिया उन्होंने अलासुर बकासुर और ये सब राक्षसों को खेल के खेल के खेलते ही उनका काम तमाम कर दिया ओह ये कृष्ण ये कैसा कैसे उसको हमको ये कहते हुए वो बड़ी जोर से चिल्ला चिल्ला करके बच्चों की भांति रोने लगते उठा गिरे कृष्ण ने सोचा ये बड़े दुखी होंगे इनको सांत्वना देना क्या सांत्वना दूं नंद बाबा आप मत रो ये कहो तो किसी का लड़का कोई मर जाए तो कोई सांत्वना देता है मत रो अरे ये लड़का आना जाना ये प्रभु की हाथ की बात है इसने रोने से क्या तुम्हारा लड़का आ जाए किंतु जो कृष्ण के लिए रो रहा हो जिनके आंख से एक बुंद भी यदि आंख कृष्ण के लिए निकलता हो तो ये महान सौभाग्यवान है सभी का हम लोग इतना सुनते हैं करते हैं भजन करते हैं कहां हृदय इसलिए परम सौभाग्य वह व्यक्ति है जो कृष्ण का नाम सुनकर उनके लीला कथाओं को सुनकर के तन्मय होकर के आंखें बरसने लगे हृदय द्रवित हो गया आज भी इसको देखा कहा कृष्ण समस्त ईश्वरों के ईश्वर अनादि स्वयं सबके आदि सब कारणों के कारण कृष्ण यहाँ सखीराम इत्यादि सबके अवतारों के भी मूल अवतारित स्वयं भगवान कृष्ण उतर भी सोच रहे हैं आज उनको अपना पुत्र मानकर के ये रो रहे हैं ऐसा सौभाग्य के रथ में मैंने कभी देखा नहीं न सुना है इसलिए उनके मुंह से हटात निकल गए आप दोनों महाभाग हैं एक ये यशोदा जी और आप ये ऐसे समस्त कारणों के कारण पर ब्रह्मा जिसको ब्रह्मा अपने ध्यान में भी नहीं देखते हैं और उसको तुम लोगों ने अपना पुत्र मान करके आंखों की पलकों की भांति तुम लोगों ने कृष्ण को पुत्री मान करके उनकी सेवा की उनको और अपना पुत्र मान करके उसके लिए रो गए तुम्हारे जैसा सौभाग्य मान को नंद बाबा सुनते ही उनकी आंखें सूख गई और कहते हैं उनसे बेटा तुमने क्या कहा तुम बड़े सौभाग्यवान तुमने कृष्ण का कर्म नहीं किया कृष्ण जैसी आपको तुमको आई नहीं मैं देखता हूं कि अभी आपों के दांत तुम्हारे टूटे नहीं तुमको तनिक भी बुद्धि नहीं हुई किसको कह रहे हैं बृहस्पति के शिष्य कृष्ण के मित्र परम ज्ञानी तत्व ज्ञानी पुत्र उद्धव को कह रहे हैं कि तुम नीला बालक है अभी दांत नहीं टूटे था नंद बाबू को कहते हैं क्यों हमको कह रहे हैं नंद बाबू देखो हमसे गलत में कोई दुर्भागा है कोई भी दुर्भागा नहीं तुम कहते हो ये कृष्ण भगवान है मैं तो सोचता था कि वो मेरा लड़का केवल है और तुमने आकर बताया कि वो स्वर्ण भगवान है ऐसे भगवान को भी पा करके मैंने उसे खो दिया वो हमारे हाथों से निकल सके अब चला गया मथुरा हमारे अंदर में इतना भी प्रेम होता तो हमें छोड़कर के जाता कभी अपनी प्रेम भूमि को छोड़कर के जहां पर कोई प्यार करता है उसको छोड़कर के जहां पर कम प्यार मिलता है उसे आदमी नहीं जाता इसलिए मेरा जैसा दुर्भाग्य जगत में किसी ने जन्म नहीं दिया आगे भी जन्म नहीं दिया भूतों का भविष्य भी ऐसा दुर्भाग्य मैं और हमारी पत्नी जो होता है और भी रोने लगे दौड़ी कहते हैं कि हाय हाय हमने बहुत गलती बहुत भारी गलती सचमुच में यह नंद बाबा जो हमारे मैं क्या कहूं जब कहूं ये तुम दुर्भाग्य हो रो मत तो शास्त्र हमारा मुख बंद कर देते ऐसा मत कहो जो कृष्ण के लिए एक बुंद भी होता है उसके समान जगत में कोई सौभाग्यवान नहीं सचमुच में यह बात तो मैंने कही नहीं किंतु नंद बाबा के तरफ से देखो तो ये ठीक है नंद बाबा बोले और ये देखो बेटा तुमको मैं बतलाऊ एक बात था वो कौन दरअसल कैसा उसका प्रेम बेटा चला गया और उन्होंने कहा हा राम तीसरी बात मुझसे नहीं मिला वही पत्नी ने शरीर को छोड़ दिया मेरे अंदर में प्रेम कहां जो मैं कृष्ण के लिए अभी तक मर नहीं गया चैतन्य महाप्रभु यही बताते हैं, प्रेम गंधों की दरासी में हरू सौभाग्य वृंदावनी सौभाग्य भरम प्रकाशित बंसी विलासचानन अवलोकनम बिना विभक्त जब प्राण प्रतंगान। मछली को प्रेम है, सचमुच में प्रेम है पानी से, पानी से मछली को निकालो क्या करती है, ये नहीं कहती कि मुझे पानी से प्रेम है, अपने प्राणों को ही छोड़ दी। हाँ, हमारा प्रेम तो ऐसा कृष्ण के प्रति नहीं हुआ, कोटि कोटि जन्मों से कृष्ण चल दिख रहे हैं, उन्हें भूल रहे हैं और प्राण नहीं निकल जाते। इसे प्रेम का आनंद भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं जीव हूँ और हा कृष्ण हा कृष्ण कर रहा हूँ, ये लोगों को दिखलाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा आभारी आदमी हूँ, मैं कृष्ण कृष्ण कर रहा हूँ, आंखों से आंसू गिरा रहा हूँ। सचमुच में ही प्रेम लाता तो मैं मर जाता। बंसी बिलाचा नन अवलोकनम बिना, मैं कृष्ण के बंसी बजाने वाले कृष्ण के मुखार विंद का दर्शन नहीं करा हूँ, मर नहीं गया, दस महाराज तुरंत राम राम का दर्शन मर गए, फिर उनके प्राण नहीं लौटे। उसी प्रकार से मेरे प्रेम कहा, इसलिए नंद बाबा तो बड़ी दूर से उनका जो है ये ठीक कर रहे हैं, इनको क्या तो इनका प्रेम कहता है, अथा अनंत है हिमालय की सुनता है चोटी सबसे उनकी 29,027 कितना फुट है, उससे भी बहुत ऊंचा लाखों में टोपी गांधी पहन करके उसकी देखते हैं कितना ऊंचा है, उसकी जड़ में आ ऐसा देखा 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 सबसे करते टोपी गिर गई। उद्धव जी की ज्ञान की जो टोपी थी गिर पड़ी, इतना इनका बात करते प्रेम सचमुच में कृष्ण ने इसीलिए इसको देखने के लिए ये भेजा था। आज मेरा सौभाग्य है इस प्रेम की मूर्ति को बात करने प्रेम की मूर्ति को देखा, यशोदा जी की तरफ में देखा, यशोदा जी के भाव को देख करके तरने होने बोली, अहो ये तो होती है इसको, ये तो बात भी कर रहे हैं, यशोदा माँ का प्रेम और भी आघात था। ऐसे कहते 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 भोर हो गई, भोर होने के बाद में ये निकले स्नान करने। उसी समय उन्होंने देखा क्या, कुछ गोपियां खड़ी हैं, कहाँ खड़ी हैं, नंदगांव में उद्धव प्यारी नाम का एक जगह है, वहीं पर बैठी जो पाया ने उन गोपियों के बदले में उन्हीं का जैसा रूप बना करके माया की मूर्ति के घर में भेज दू, अपने पतियों को चाहते थे, इसलिए पति लोग समझते थे कि हमारी स्त्रियां तो हमारे घर नहीं है, इसलिए उनके प्रति कोई भी असूया नहीं प्रकाश की, कोई कुछ नहीं बोले, उसमें यह हमारी स्त्रियां नहीं और तब से वो घर में लौटी नहीं, उसमें एक दंपावी वही बन उधर भी पहले पहले उनको देखा, वो क्या बातचीत कर रहे हैं, ओ ये किसका रस खेल कर रहे, देखता हूँ देखती हूँ ये रस किसका, मैं नहीं जानती आता नहीं, अरे वो अक्रूर आया है ना, क्रूर आया है, पहले एक बार क्रूर आया ले गया हमारे किया हम लोगों को दिया, ये दूसरा बार क्यों आया, तू नहीं जानती ये इसलिए आया है, सुनते हैं कि कंस मारा गया है तो उसकी बारहवीं होती है ना, पिंडदान किया जाता है, देखा कि मथुरा में पिंडदान से ले आए वृंदावन में, कहो इसलिए क्रूर आया है पिंड ले जाने के, पिंड यहाँ क्या सभी ब्रजवासी कृष्ण के पीठों में मर गए हैं, इसलिए सहज रूप में उनका पित्र पिंड निकलेगा, उसी को निकाल कर लेकर के कमी का पितृ तर्पण और उसको इसलिए जाता है उनका दिया, जैसे बात तो ठीक है किंतु ये भी बात नहीं, बात यह है अपने मैया बाप को दिखलाने के लिए कि मैं मथुरा का राजा बन गया, मैं एक गरिया की भांति गोपाल अवतार मैया कराता था और मैं राजा नहीं रहा, अब मैं यहाँ पर कंस को मार करके यहाँ पर महाभिराज मथुराधिराज द्वारकाधीश बने हैं, इसलिए उनका नौकर भी आ रहा है सोने के रथ में चढ़ करके, तो वो किस रथ में आएंगे किसी को दिखलाने के लिए, मानो ये नौकर को भेजा है सोने के रथ में, तो सभी कहते हैं है मैं जानता तो सोने के रथ में चढ़ करके नहीं आता, ये तो बड़ी भारी गलती है बहुत भारी भारी गलती, वो दिन दिन उसको क्या है बड़े लज्जित हो गए, सोचा प्रति दो खंड हो जाती मैं इसके अंदर नहीं समा जाता। इतने में गोपी ने कहा ये जानती है कौन है, कृष्ण का कोई अंतर होगा दूर, ये कैसे तुमने समझा, इसलिए समझा ये श्याम तो है, मैंने कृष्ण कहते ही श्याम ऐसा ही कि तो कृष्ण से जो ये पद छोटे हैं उधर, और कृष्ण का जैसा रूप रंग और बड़े मधुर स्वभाव इसके आगे बैठे, और कृष्ण ने आते समय अपनी पानमाला पहना दी, अपना पीतम्बर भी पहना दिया, ये कपड़े भी पहना दिए, एकदम कृष्ण जैसे ही। वो भी आता नहीं है, कौन को भी आता नहीं है, जो इस तमाम वृक्ष को देकर के कृष्ण समझ करके और उनका आलिंगन करती है, मैं को कृष्ण समझती हैं, कोई काले बादल को देकर के कृष्ण समझती हैं और तन्मय हो जाती हैं। आज ये गोपियां साक्षात कृष्ण के समान समभाव वाला ऐसे युवक को देकर के भी प्रेम ने उनकी रक्षा की, नहीं तो वो कृष्ण समझ करके आलिंगन कर सकती थी, इसलिए प्रेम उनकी रक्षा करता है। मर्यादा प्रेम की भी मर्यादा होती है, प्रेम अमर्यादित नहीं होता। इसलिए एक गोपी कहिए, देखो श्याम है किंतु श्याम नहीं, श्याम अच्छे बढ़े किंतु श्याम है, श्याम है किंतु श्याम नहीं, क्या है ये भ्रमर भी श्याम है, श्याम है किंतु श्याम नहीं है। तो ये श्याम तो है किंतु श्याम नहीं, कौन है श्याम का रूप है, कैसे उद्धव जी सुन रहे हैं सब बहुत दूर से कह रहे हैं श्याम नहीं है तो कौन है श्याम का रूप है, कैसे समझी, देखो आंखें भूल कर सकती हैं, हमारे नाके कभी भूल नहीं करेंगी, लाख प्रकार का गंध हो, देवी जमेली जूई और भी कमक का भी गंध हो, उसमें वो पीले पीले वो क्या होते हैं राधा जी के अंग में चंपक चंपक पुष्प हो और देवी के पुष्प हो सभी मिला करके, किंतु उसमें कृष्ण का गंध जो होता है वो अलग ही तरह का होता है, हम समझ जाएंगे ये कृष्ण के अंग होगा, ये जो आया है ये जो फूल जो पहना है माला इसमें कृष्ण के अंगों की गंध आ रही है, और ये जो कपड़े पहना है पीतांबर ये इसका नहीं है, उन्होंने उचित रूप में इसको जरूर पहना दिया है, इसीलिए उसके अंगों से ये कृष्ण के अंगों की गंध आ रही है, इससे फूल नहीं हमारी हो सकता। ये धन्य गोपी, मैंने नंद बाबा को देख करके मैं आश्चर्यचकित था, ये गोपियां तो उनसे भी दो अंगुल और ऊपर वाली है, वहां जाकर उन्होंने प्रणाम किया और बैठ और 5 मिनट बहुत लंबा प्रसंग है, मैं केवल एक भूमिका दे रहा हूँ, अब जब आऊंगा तो इसको एक दो श्लोकों को इसमें से सुंदर सुंदर आप लोगों को सुनाने की चेष्टा करूंगा, इसके सुनने के अधिकारी भी बहुत दुर्लभ हैं, सुनाने वाले की तो बात नहीं क्या, मैं इस सुबह मैंने अपने गुरु जी से जो कुछ समझा समझा उसका थोड़ा सा कुछ भाग देना चाहता हूँ, मैं अकेले ही क्यों और साधन करूँ, आप सब लोगों को भी इस तरह का कुछ पिला दूँ जैसे कि आप लोगों के जीवन में भी उनके प्रेम के प्रति लालसा एक जब उठे, यदि अलता जब उठी तो हमारा साधन का जन एकदम ठीक है, और यदि लोग नहीं हुआ भागवत पढ़ने पर भी कुछ प्रसंगों को सुने तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इसलिए उद्धव जी वहां पर गए, एक गोपी वहां पर थी, उन सब गोपियों ने लेकर के एक मूल जो गोपी थी राजा जी भागवत में काश्चित लिखा, काश्चित मैंने क्या परोक्ष रूप में कहा, मैंने कहा राम इधर आ जाओ, किसी लड़के का नाम है, एक ये डायरेक्ट कहना है, भारत में ऐसे कोई प्रसंग नहीं लिखे गए, परोक्ष रूप में कहे गए, एक लड़का है गले में वैजयंती माला है, पीतांबर पहने है, मधुर मधुर वेणु बजाता है, वृक्ष तक भी उसे आकर्षित हो जाते हैं, बोलो तो ये युवक किशोर कौन है, इस तरह से परोक्ष रूप में बदलाया गया, जैसे एक व्यक्ति है वो बैठे हुए हैं, वो लाल कपड़े पहने हैं, लाल उनकी कमीज है और शर्ट पहने हैं, केस यहाँ पर उनके हैं, हाथों में घड़ी है और उनके लक्षण बदला दिए, नाम नहीं है, तो ये काशिक कौन हुए, वो व्यक्ति इसी तरह से भागवत में समस्त सारे प्रसंग बदलाए गए हैं, बल्कि इसमें अलग चीज बोलने में कमी है, इसलिए प्रेम की बात करके घुमट के अंदर नहीं रखना चाहिए, वो प्रकाश करने से प्रेम तो एकदम अंतरहित हो जाता है, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं वो गोपी कोई सो रही थी, सोने की पुतली कमल के पत्रों पर कमल के सुरों पर तेज पर सुन, उसके विरह के ताप से वो कमल झुर झुर हो गए, चंदन उसको लगाया गया था मोटा मलय मलयगिरी का, और वो भी मलय एकदम चूर चूर हो गया सूख गया, ये गोपी मन ही मन में देख रही, ध्याय कृष्ण का अंग मिलन से जो मथुरावादी है इनके भाव में कृष्ण देख रही है, ताकि वो बिना वो किचोरियों के रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। वो वहां पर एक फूल को छोड़कर के जैसे ब्राह्मण दूसरे फूल को प्यार करता है, तीन लोगों के मान नहीं लौटता। यहाँ तक उसका यह भी ज्ञान नहीं रहता ये बिना गंध वाला ये फूल है, ये भी नहीं। इसी तरह से मथुरा में किसी किशोरी से मिलने का ध्यान करती हुई कुछ रोष से वो कुछ बोलने लगी, पूछ करके बड़ी मस्ती से बैठी और बैठ करके बतला है। कृष्ण भौरे बन करके वहां पर पहुंचते हैं उस प्रेम का पालन करने के लिए, और उसका भी ठीक उसी समय में पहुंचते हैं। कृष्ण उसके पीछे पीछे भौरे का पालन करके वहां पर राधा जी के चरण कमल ऐसे सुंदर मधुर हैं, इतने मधुर हैं, इतने सुगंधित हैं, इतना कोमल है कि मानो समाज जनकृत करता हुआ उनके चरण कमलों में प्रवेश करने की चेष्टा करता है। मधु के लोग राधा जी ने भाव में मधु की तो अबंध हो मान के सामग्री चपतना कुछ मिले भी तमाला तुम कमल पास को देना बात मधुपति तन मान ली ज्ञान प्रसादम जब सदस्य विडम्बम जब रूप का समय करेंगे रोज भरी नेत्रों से करेंगे। मैंने कहा कि उनको प्राण संचार हो गए, अरे मधु दूर हो दूर अपवित्र होकर के हमारे चरण कमलों को चुने विस्तृत तथा मतकर वो कुछ कुछ गुंजार करता हुआ वहीं पर दूर रहा है। अब तुम कह रहा है सामने जी मैंने क्या किया जो मैं अपवित्र हूं, अरे मधु मधु मैंने क्या मधु उपान करने वाला मधु कितवा बंधो कितवा बंधो मैंने छलिया का बंधु थल का बंधु किसको थल बतला रही है। मधुपुरी में एक थल रहता है उसने मध्य धारा खोल रखी है, मध्य मध्य का विराट दुकान उसकी है, होलसेल वहीं से मधु बिकता है, मधु मैंने मदिरा बिकता है, उसका मालिक मधुपति है, मधुपति मैंने कृष्ण मधुपति, और तू वहीं से पूर करके आया है जब तुमने मधुपान किया। सामने की कैसे कह रही है मैंने तो मधुपान नहीं किया, जरूर आया का लक्षण तो है ना, क्या किसी को समझाने और संपना देने के लिए आना चाहिए तो वैसा देश बना करके आना चाहिए। तुमको होश नहीं है, ज्ञान देंगे कहां पर कैसी बात करनी चाहिए, कैसे जरूर सुनना चाहिए, पवित्र होकर के आया है, अरे अपने गुरुओं में प्यार लाया वो कौन। मैं स्वामी जी कुछ नहीं करा, अरे लगाया नहीं मैं देखू ये लाल जैसा रंग लगा हुआ है ये क्यों, ये जानते हो मैं बताऊं ये कहां से आया। हम लोग की शौक सुनेंगे तब में उनके बस्तक स्थल में जो कुमकुम था वो कृष्ण से मिली और वो माला बुझा गई कि तू उनका जो कुमकुम कृष्ण आया उसी पर तुम बैठा इसलिए ये तुम्हारे आ गए, और तुम फिर आता है हमारे दिखना करने के लिए तुम्हें देख करके मैं रोज शौक होगा तू यहां से जल्दी लेकर आएगा। जिसका कुछ ही ऐसा है तो वो कहते होंगे जदुओं की सभा में जब उनको पकड़ेंगे जैसे ये प्रेम करता है उस समय ये जदु लोग उनसे प्रतिशोध लेंगे इसलिए तुम जल्दी से चले जाओ। अंत में भी का एक श्लोक करके अपना वक्त करके समाप्त करता है। मृग लोक परिंद्रम दिव्य दे इस में कृत विरूपा इसी जीत हदा में आनंद बलिमत बलिमत्ता आवेश यद धन शवत जल तथा अशत सौख्यम सब कथा न कहते हैं मृग लोक परिंद्रम। स्वामी जी आप हमारे प्रभु की निंदा इतने करते हैं आप ऐसा नहीं कर रहे, उन्होंने कौन सा ऐसा दोष किया, उन्होंने तो आपको छोड़ा नहीं, आपके प्रति बड़े अनुरक्त हैं इसलिए उनसे संधि करना है कि मैं समझता हूं उनसे संधि की लीजिए उनसे मतभेद मत कीजिए, वो आपके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते, भाई तुम्हारे प्रभु का कुछ गुणगान करूं बतलाऊ। देखो उनकी बात छोड़ो, काले नाम के जितने हैं ऐसे ठग सब हैं धूर्त होते हैं किसी से प्रेम नहीं करते सबसे नकली प्रेम करते हैं, ये काला रोटी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। दूसरा उदाहरण दू ये पिछले द्वापर में एक काला हुआ वो दशरथ जी का पुत्र बन करके आया, उसने कहा मैं बड़ा भारी त्यागी हूं उसने सब कुछ छोड़ दिया पिताजी को, मैया को, राज्य को, सबको, भाई को सब छोड़ दिया। बिल्कुल इतना बड़ा त्याग है कि अपने स्त्री को साथ में ले गया, उसको क्यों ले आया? अरे जब भी साधु बनना है, त्यागी बनना है तो उसे भी छोड़, तो उसे तो छोड़ा नहीं, उसे साथ में ले आया। खड़ा बनता था लकड़ी की, बड़ा त्यागी जटा जुट बना दिया। और धनुष की क्या जरूरत है जब तुमने सभी कुछ पढ़ा तो धनुष भी था। यहां तक तो उसने एक बंदर को मारा। ये बंदर कौन? मृगरिम कपिंद्रम दिव्यदे लुप्त धर्म। अरे जिस बंदर का मनुष्य आदमी मांस नहीं खाता, जिसे बहिया तक नहीं मारते, आज उस बंदर को किसने मारा? कौन? कि जो सबक त्यागी बना हुआ किस लिए मारा? कहता है स्त्री जी सह, मैं स्त्री जीत हूं, मैं जितेंद्रिय हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा व्यक्ति पाली को मारा किस लिए? वो भी पेड़ की आड़ से मारा। मारने के बाद में पाली के पास ले आए, बोले क्यों हमको मारा? अरे तुम एक कामी, वो एक कामी, उसकी स्त्री हमारे पास में और तुम्हारी स्त्री को हरण करके कोई ले गया, मारा क्यों उन्हें? अरे तुम सीधा साधा हमारे पास में आता, पता कि हमारी स्त्री खो गई है, वो लेकर के क्या कर, हमको पकड़ करके पिताजी के साथ में तुम्हारे यहाँ कर देता। हूँ हमारे कांच के अंदर में बर्फों तक पड़ा था, बड़ी मुश्किल से वो एक बार सूर्य की पूजा कर रहे थे बाली जी, और वो रावण युद्ध करने के आया, युद्ध हम दे युद्ध हम दे, उसने ऐसे पकड़ लिया जैसे मच्छर पकड़ते हैं यहाँ पर बंद करके, और वो सूर्य को दस जम देता है। थोड़ी देर के बाद में कुछ बहुत दिन रहा, इसके बाद में वो दांतों से काटने लगा, नौकों से उनको नोचने लगा, वो घूम गए जिसके अंदर में कुछ है, उन्होंने देखा जैसे कोई कीड़ा काट रहा था, ऐसे ऐसे किया तो उड़ करके भाग रहा। उस रावण को मैं कहता था पकड़ करके ले आता पिताजी को साथ में, कौन सी बड़ी भारी बात है तुम इसके पास में गए? राम ने कहा देखो हमने इसे निकाली की है, हमने पट्टी जाके हमारी स्त्री को खुद करके लाकर और इसी स्त्री को मैं ला रहा हूँ। तो बतलाओ तो ये दोनों काम गोपी कह रही है, देखो ये दोनों काम की स्त्री और कहते हैं कि हम स्त्री जीत हैं। अरे सोचो देखो एक स्त्री पर खाए और उस राम कालू देख करके मुक्त हो गए। अरे क्यों नहीं, जब जीवड़ी तक मुक्त हो जाती है पशु पक्षी सभी मुक्त हो जाते हैं, तो यह सुर्पनखा नाम की क्या चीज है वो तो मुक्त हो गई। जिसको नहीं करना चाहिए उस बात को उसने कहा कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, आप मुझे भाग्या के रूप में मुझे ग्रहण कर लीजिए, मेरी जैसे सुंदरी कृष्ण में कोई नहीं है, आपसे ज्यादा सुंदर कोई विष्णु में नहीं है, ये जोड़ी बड़ी अच्छी बैठे। उन्होंने उसका नाकाम कर दिया। क्यों? अरे तुम कहते हो कि मैं सबकी कामना पूर्ण करता हूँ, तो कामना तो पूर्ण कर, उसका नाकाम क्यों पड़ा? वही कह रही काला है ना, इसलिए काला मैं तो इसे शादी कर पाई और संसार में विश्व में कोई भी इसका पूर्व देख करके इसके साथ में शादी नहीं करे, इसलिए काला पर बताओ ऐसा था कोई और जगत में होगा, ऐसा सुबह कोई होगा, ऐसा कोई नहीं होगा, इसलिए कालों की बात करते। और सुनेगा भ्रम नहीं होगा, इसलिए प्रभु की ऐसी के काले हैं उनकी महिमा और कुछ बदलाऊ, इसलिए हमारे समझ उसे नहीं हो सकती। एक काला और था उसने अपना नाम रखा बांगू, वो भिक्षा मांगने के लिए गया, कोई कमी नहीं किसी भी भिक्षा मांगने के लिए, और भिक्षा मांग करके क्या करता है, कहता है हमको दिक्कत हो गई। उन्होंने कहा ले लो, जब देने लगा तो कैसा किया? प्रभावी उदाहरण एकदम, और तीन पत्ते सारी पृथ्वी सारे भूमंडल यहाँ तक सब लोग तक पाताल लोग तक सभी दे दिया, तीसरे कदम के लिए कोई जगह नहीं, एक से पृथ्वी दूसरे से समस्त ब्रह्मांड और तीसरे के लिए जगह मैंने ली। वो बेचारा क्या करता था कि हम ही को माफ लो अपने को भी दे दिया और उसको बांध लिया और बांध करके गिरा करके नाक पास पे कस लिया। वो तो प्रहलाद महाराज के ब्रह्मा है, अरे ये प्रभु ये क्या कर रहे, इसने सर्वस्व दे दिया और आप इसको बांध रहे हैं, बड़ी मुश्किल से। इस तरह से इनकी बात क्या कहें, ये तो कहते हैं ये काले वाले कौवे हैं, कृष्ण का नाम कहीं नहीं दिया, काला काला सबका नहीं है, कौवा का उपमा दिया, कृष्ण भी काले थे कौवा भी काला, कौवा भी स्त्रियों के सिर से खाने वाली चीजों को लेकर के उनको ठुकराता है, ऐसे ही ये उसी चीज का खाते हैं उसी को ठुकराते हैं, एक को से दूसरे। इस तरह से तरह तरह की भावनाएं करते हुए कभी क्रोध से कभी रोष से इन बातों को गाय आज समय अधिक हो गया आप लोगों के लिए भी हमारे देश के लिए भी। फिर हम कभी आएंगे 6 महीने के बाद में उस समय में हम लोग चेष्टा करेंगे उस समय मिलेंगे तो उस समय में केवल इन्हीं 6-7 या 10-14 श्लोक हैं इनके ऊपर में कुछ थोड़ी थोड़ी जमीन का और व्याख्या करने की चेष्टा करें। आप लोग इसके बाद में हरिनाम कीर्तन करते हुए हम लोग आज का ये समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा।